Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Vishwatmanandji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Hari Om. Hari चातुर्यं विलसति समाधुर्यमखिलं गुणालीयं नित्यं वरयति मरालीवदयितं स्मरामि प्रातस्तं सरुचि करुणापूरमधुरम् अखण्डानन्दं श्री गुरुवरमहं ब्रह्म परमम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः हरि ओम् नारायण 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 कठोपनिषद की दूसरी वल्ली के दूसरे अध्याय के ये तीन मंत्र 11, 12 और 13 हैं। इनका लगभग एक ही अर्थ है कि ये जो आत्मा है यही सब भूतों का आत्मा है, यही वेदांत का सिद्धांत है। तो जो अपने आत्मा को सब भूतों की आत्मा के रूप में जान लेता है उसको एक तो बाहर से कोई दुख नहीं होता, उसे आनंद होता है, का अर्थ है कि आत्मा का जो स्वरूप आनंद है वो उसमें मगन रहता है। सुख किसी खास प्रकार का होता है ऐसा उसका अर्थ नहीं है, दुख नहीं होता है। तो दुख नहीं होता है तो उसका विपरीत जो सुखी भाव है वो भी नहीं होता है। मैं सुखी हूं मैं दुखी हूं ये दोनों भाव कर्म के ही फल हैं। मैं करता हूं मैं भोगता हूं, किया है अब भोग रहा हूं इसलिए मैं सुखी हूं मैं दुखी हूं। भोग जो है या तो सुख होता है या दुख होता है। और आत्मा जो है वो किसी कर्म का फल नहीं है, वो तो स्वयं सिद्ध वस्तु है इसलिए उसमें सुखी दुखी भाव नहीं होता। दूसरी बात ये बताई कि उसको ही सुख और शांति की प्राप्ति होती है जो अपने आत्मा को संपूर्ण आत्माओं के स्वरूप में अनुभव करता है। न इतरेषां, दूसरे लोगों को ये उपलब्धि नहीं होती। तो ये दूसरे लोग कौन है? तो भाष्यकार लिखते हैं इसमें, ये निवृत्त बाह्य वृत्तयो अनुपश्यन्ति आचार्यागमोपदेशम अनु साक्षात अनुभवन्ति धीरा विवेकिना। ये अनुभव तो उन लोगों को होता है जो बाह्य वृत्तियों से निवृत्त हो गए हैं। वृत्ति माने व्यापार, बाह्य व्यापार से जिनकी चित्त वृत्ति निवृत्त है, तो क्या ठल्लम ठल्लू बैठे रहते हैं वो? तो बोले नहीं, लेकिन हमको ये करना है, ये हमारा कर्तव्य है, ऐसा बोध उनको नहीं होता। एक संकल्प हुआ, उसके अनुसार कर्म हो गया तो ठीक, नहीं हो गया तो ठीक। मेरा कर्तव्य है, ऐसा कर्तव्य का बोझ वो अपने सिर पर नहीं लाता है। तो निवृत्त बाह्य वृत्तया अनुपश्यंती, ऐसे लोगों को ही ये आत्मज्ञान होता है, आत्मा का सब आत्माओं के रूप में। आचार्य आगमोपदेशम अनु, ये अनुभव कैसा होगा? तो बोले कि आचार्य माने अपने संप्रदाय के, अर्थात वेदांत संप्रदाय के, वेदांत संप्रदाय के आचार्य जो उपनिषद के ऋषि हैं, या उनके प्रवक्ता जो श्री शंकराचार्य भगवान हैं, और आगम उनके अनुसार जो और शास्त्र रचे गए हैं, उन शास्त्रों के अनुरूप उनको अनुभव में आता है। धीरा विवेकना तेषां परमेश्वर भूतानां शाश्वतम नित्यम सुखम आत्मानंद लक्षणम भवति। अब ऐसा जो व्यक्ति, अभी महाराज श्री बोल रहे थे ना टेप में, ये ब्रह्म ज्ञान जिसको हुआ है वही प्रमाणित कर सकता है कि ऐसा ही है जैसा आचार्य और वेदांत बोलता है। आखिर को ग्रंथ तो कुछ बोलते नहीं है, बोलेगा तो कोई चेतन व्यक्ति। तो चेतन व्यक्ति कौन बोलेगा? मैं पढ़ करके बोलने लगूं तो मेरी बात अगर पढ़ने के अनुसार है तब तो वो एक कक्षा में प्रमाण हो सकती है, लेकिन सुनने वालों के मन में खूंटा नहीं गड़ेगा ना। तो खूंटा किसका गड़ेगा? एक महात्मा है तो महाराष्ट्र के जो अंतिम प्रवचन है ना नवंबर के, तो प्रश्नोत्तर चल रहे थे तो वो थोड़ी दूर बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा महाराज जी प्रश्न हमारा ये है कि जो बातें आप बोलते हो वही बातें हम भी बोलते हैं, लेकिन हमारी बात का तो लोगों पर कोई असर नहीं होता है और आपकी बात का जो है असर होता है। तो महाराज जी ने कहा जरा हमारे पास को आओ। तो वो बोले वो ऐसा है महाराज, जरा मुझे लोगों की सांस लगती है। तो बोले बस यही अंतर है, तुमने ब्रह्मतम परादात यो अन्यत्र आत्मनो ब्रह्म वेद, वो ब्राह्मण तुमको पराजित कर देगा यदि तुम आत्मा से भिन्न ब्राह्मण को जानते हो। तो तुम दूसरों से अपने को अलग कट ऑफ करके और अपने में महत्ता बुद्धि स्थापित करके जब बोलते हो तो उसका प्रभाव नहीं होता है। सब मेरी आत्मा ही है, सबके मन में ये बात बैठ जाए इस भावना से यदि आप बोलते हो तो वो बात बैठेगी। तो ये सर्वभूतांतरात्मा बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो परमेश्वर भूत हो जाता है। परमेश्वर भूत माने अब तक वो अपने को देह भूत मानता था, जीव भूत मानता था, अब वो अपने को ब्रह्मभूत मानता है। गीता में आता है ना, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। तो ब्रह्मभूत का मतलब कोई ब्रह्म का आवरण ओढ़ लिया उसने, या परमात्मा का खोल ओढ़ करके और वो परमेश्वर भूत हो गया, ऐसा मतलब नहीं है। उसे यही स्फुरण होता है कि मैं परमात्मा ही हूं। देखो परम आत्मा आत्मा परमेश्वर इन सब में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। शब्द में अगर अंतर ना हो तो शब्द बदलने की जरूरत ही नहीं होती है। ये परमेश्वर को हम अपने से जो अलग मानते हैं, इसके मूल में क्या बात है? मूल में ये बात है कि हम थोड़ा कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, जो हम करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते हैं। और एक शक्ति ऐसी है जो सब कुछ कर सकती है, जो चाहती है सब कर सकती है, उसी को परमेश्वर बोलते हैं। लेकिन ये परमेश्वर को अलग मानने का ठीक कारण नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के संबंध में और आत्मा के संबंध में केवल उपनिषद विद्या ही प्रमाण है, दूसरी हमारी आपकी भावना उसमें प्रमाण नहीं है। आप इसलिए मानते हो, ठीक है, मानते रहो, लेकिन उससे वेदांत क्या अपने सिद्धांत बदल देगा? वो तो कहते हैं नहीं, दोनों एक ही हैं, जीवो ब्रह्म ही न अपरा, दूसरा है ही नहीं है, जीव ब्रह्म ही है। तो मैंने आपको शायद सुनाया था, तो 79 की बात है, मैं यहां आया था तो महाराष्ट्र ने पूछा कि अच्छा बताओ अनुभव किसे कहते हैं, तो जो कुछ मन में आया वो बताया। तो बोले भाई देखो, हमने तो दसियों बरस अपने इस बात में खराब कर दिए कि अनुभव है, अनुभव नहीं होता है, अनुभव नहीं होता। जिस महात्मा के पास जाते थे वो यही कहता था, अभी तुम्हें ज्ञान तो हो गया है लेकिन अभी अनुभव नहीं हुआ है। तो अनुभव क्या चीज है? दस बरस, क्योंकि दसियों बरस हमारे इसमें खराब हुए और निष्ठा बनने ही ना पावे, तब फिर अंत में ये निष्कर्ष निकला कि अपना जो निश्चय है उसी को अनुभव बोलते हैं। मैं मनुष्य हूं ये हमारा निश्चय है, अगर कोई कहने लगे कि तुम भेड़ बकरी हो तो आप मान लोगे? या मैं भेड़ हूं मैं बकरी हूं ऐसा भीतर से स्फुरण होगा? नहीं होगा, ना आप मानोगे ना ऐसा स्फुरण होगा। तो अब यदि विपरीत स्फुरण होने लगे, मैं ब्रह्म हूं यही स्फुरण होने लगे, और दूसरे लोग कहें, महात्मा कहे कि तुम ब्रह्म हो, तो तुरंत स्वीकृति हो जाए कि हां हम ब्रह्म हैं, इसी को निश्चय बोलते हैं नारायण, जिसमें कुछ संशय ना हो। और बोले हां 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 ब्रह्म तो हैं, तो हैं तो हैं तो हैं करके जो है कुछ ना कुछ उसमें अपनी चूं चपड़ जरूर लगा देते हैं उसमें। तो यही अनिश्चय की स्थिति है नारायण। फिर उन्होंने एक बात और बताई थी, वही बात बता रहा था मैं। वो कहते थे कि और ये जो जीव है ना, मैं यही ब्रह्म है। जिसको हम लोग निखद्ध मानते हैं, और अच्छा मैं को छोड़ करके यदि कोई मैं है और वो ब्रह्म है नारायण, तो कभी जीवन मुक्ति सिद्ध नहीं हो सकती। जीवन मुक्त किसे कहते हैं? जिसमें ये मैं तो स्फुरित हो लेकिन जीवत तो स्फुरित ना हो। ये जरा बारीक बात है, जिनकी समझ में आ गई हो ठीक है, नहीं आ गई हो तो नोट कर लेना, फिर विचार कर लेना, इसमें गंभीर बात है। जीवो ब्रह्मैव नापरा, इसके ऊपर मैंने ये बात सुनाई है आपको, ये जीव ब्रह्म ही है। तो यहां लिखा है परमेश्वर भूतानाम, जिस किसी कारण से परमेश्वर हमको अपने से अलग मालूम पड़ता है, वो सब कारण उसके समाप्त हो जाते हैं और अपने बारे में और जगत के बारे में और परमात्मा के बारे में एक ही स्फुरण होता है कि ब्रह्म है ब्रह्म है ब्रह्म है ब्रह्म है नारायण, ब्रह्म हूं ब्रह्म है ब्रह्म ही है, अन्य कुछ नहीं है। तो परमेश्वर भूतानाम शाश्वतम नित्यम सुखम आत्मानंद लक्षणम भवति, उनको ही आत्मानंद लक्षण वाला यह आनंद मिलता है जिसको शाश्वत सुख कहा गया है। न इतने शाम, उन लोगों को नहीं मिलता है जो कि बाह्य आसक्त बुद्धि नाम अविवेक नाम स्वात्म भूतम अपि अविद्या व्यवधानात्। ये आत्मा ब्रह्म सबका अपना आत्मा ही है, लेकिन अविद्या के व्यवधान के कारण, रुकावट के कारण ये स्फुरित नहीं होता है। तो इसलिए जो जिनकी बाह्य आसक्त बुद्धि है और जो विवेक भी नहीं करते, एक तो मैं कछु जानू ना हूं और एक काई की मानू ना हूं ना। एक महिला थी तो वो कहते थे जिसमें 100 गुण होंगे उससे विवाह करूंगी। अब 100 गुण संपन्न कोई मिले नहीं, तो फिर उसने अपनी कंडीशन जरा कमती करी। बोले चलो 100 ना सही, एक आध कम हो तो कोई बात नहीं है, चलेगा। अब उम्र बढ़ रही थी, क्या करें, विवाह तो करना ही था। जो एक मूर्ख को ले आए, पहले तो ये नाई ब्राह्मण यही लोग जाते थे विवाह पक्का करने, तो एक मूर्ख को ले आए, जैसे कालिदास का विवाह हो गया ऐसे ही। तो उसने कहा कि पहली मुलाकात में कि आप पहले ये बताइए आप में कौन से गुण नहीं है, जब आप में वो गुण मैं पैदा कर दूंगी तब हम पति पत्नी का व्यवहार करेंगे। अरे बोले अब तो ब्याह हो गया, अब छोड़ो, अब किन बातों की, तो पुरानी बातें पड़ गई। कि नहीं 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 आप बताइए क्या बात। तो बोले मेरे में 98 गुण हैं लेकिन 2 गुण नहीं है। बोले क्या गुण नहीं है? तो एक तो मैं कछु जानू ना हूं और एक काई की मानू ना हूं। जानता भी कुछ नहीं और किसी की मानता भी कुछ नहीं, अब उसे कोई क्या सिखाएगा नारायण। तो उसने सिर पीट लिया, बोले बस 2 ही गुण नहीं है। तो इसमें कहते हैं अविवेक नाम, अविवेक ही है कि स्वयं जानते नहीं किसी की मानते नहीं। क्यों? बोले बाह्य विषय में आसक्त हैं, ऐसे लोगों को ये तत्व ज्ञान नहीं होता है। अब कहते हैं 13वें मंत्र में, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम यो विदधाति कामान तम आत्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरास तेषाम शांति शाश्वती नेतरेषाम। नित्यो अनित्यानाम, अनित्यों में जो नित्य को देखता है अथवा अनित्य में जो नित्य वस्तु है, चेतनश्चेतनानाम, चेतनों में जो चेतन है, और एको बहुनाम, और एक रहता हुआ बहुतों के विदधाति कामान, सब कामनाओं को जो पूरी कर देता है। स्वयं तो एक है लेकिन अनेक लोगों की अनेक कामनाओं को पूरी कर देता है, ऐसा जो तत्पदार्थ है, परमेश्वर है, तम उसको आत्मस्थम आत्मा में स्थित, ये अनुपश्यन्ति जो धीर पुरुष अनुभव करते हैं, तेषाम शांति शाश्वती उनको ही शाश्वत शांति प्राप्त होती है, न इतरेषाम दूसरे लोगों को नहीं होती। नित्यो अनित्यानाम, कल आपको बताया था सामान्य और विशेष। तो सामान्य जो है ये तो जाति है, जैसे जितने मनुष्य यहां बैठे हैं तो, लेकिन सब एक जाति के हैं, सब मनुष्य ही हैं, कोई इसमें पशु जाति का नहीं है, पक्षी जाति का नहीं है, सब मनुष्य जाति के हैं। तो जाति जो है ये तो है सामान्य, सब में ओतप्रोत है, और ये अमुक है, ये अमुक है, ये अमुक है, ये विशेष है। तो बोले अब ये एक मनुष्य मान लो सीन से हट गया, चला गया, तब भी मनुष्य जाति तो रहेगी रहेगी। तो विशेष के मर जाने से सामान्य नहीं मरता है, लेकिन सामान्य भी मर जाता है जब प्रलय होती है। मान लो कोई ऐसा बॉम्ब बने कि मनुष्य जाति कोई खत्म कर दे, कभी ऐसा हो जाए मान लो, या प्रलय हो जाए। पहले प्रलय होती है कि नहीं होती है ये अलग बात है, लेकिन मान लो हो जाए तो फिर ये मनुष्य जाति भी नहीं रहेगी, मनुष्य भी नहीं रहेंगे, सामान्य भी नहीं रहेगा, विशेष भी नहीं रहेगा। उस समय क्या रहेगा? बोले बस वही है नित्य वस्तु। जो सामान्य और विशेष इनके ना रहने पर भी जो रहता है उसको नित्य वस्तु बोलते हैं, और सामान्य और विशेष ये अनित्य हैं। सामान्य विशेष की अपेक्षा से अधिक समय जिंदा रहता है, लेकिन मरता वो भी है, तो है इसलिए वो भी अनित्य ही। तो नित्यो अनित्यानाम, अनित्यों में ये नित्य वस्तु है, और चेतनश्चेतनानाम, और चेतनों में चैतन्य है। अच्छा, ब्रह्मा जी चैतन्य हैं कि जड़ हैं? चैतन्य है। और मच्छर? वो भी चैतन्य है, और भी मच्छर से छोटी कोई बैक्टीरिया होगा वो भी चैतन्य है। तो ब्रह्मा जी से कोई बड़ा चैतन्य वाला नहीं है, और मच्छर या उस बैक्टीरिया से कोई छोटा नहीं है। तो लेकिन ये बड़े से बड़ा भी चैतन्य वही है, और छोटे से छोटा चैतन्य भी वही है। चैतन्य का जो लक्षण है स्वयं प्रकाश होना, यही चैतन्य का लक्षण है। क्रिया चैतन्य का लक्षण नहीं है ना, क्रिया तो चैतन्य में से निकल आती है। चैतन्य में जब भेद होता है तब क्रिया मालूम पड़ने लगती है। अब देखो एक उंगली है, एक है, अब ये एक मैंने हटा ली, अब दूसरी उंगली रख दी, तब भी एक है। अब ये दो उंगली हो गई, दोनों हो गई, तो अब ये दो कैसे हो गई भाई? ये भी एक था, ये भी एक था, ये दो कैसे हो गई? क्यों, अंतर क्या हुआ? तो बोले हमारी वृत्ति पहले एक पे आई, फिर दूसरे एक पे आई, तो ये जो भेद हुआ ना, ये भेद बुद्धि से ये काल में गति मालूम पड़ने लगती है। तो ये क्रिया जो है ये ज्ञान का विवर्त है, ज्ञान ही दूसरे रूप में क्रिया रूप मालूम पड़ती है। नारायण, तो चेतनश्चेतनानाम। अच्छा, तो ब्रह्मा जी का चैतन्य स्वयं प्रकाश और है, और मच्छर का स्वयं प्रकाश चैतन्य और है? एक ही स्वयं प्रकाश चैतन्य है, इसलिए जितने भी चैतन्य हैं उन सब में एक ही चैतन्य है, ये इस वाक्य का तात्पर्य है। चेतनों में वह चेतन है। जैसे अग्नि, उदाहरण कल भी दिया था ये, कि पानी जो है वो जलाता नहीं है, लेकिन यदि पानी को गर्म कर दिया जाए तो अग्नि के निमित्त से, अग्नि के सहचर्य से वो भी जलाने लगता है, लेकिन जलाने का काम अग्नि का है, पानी का नहीं है। इसी प्रकार से ये उपाधियों के भेद हैं। ब्रह्मा जी की एक उपाधि है, मच्छर की एक उपाधि है, और विष्णु भगवान की एक उपाधि है, शंकर भगवान की एक उपाधि है, ईश्वर की एक उपाधि है, एक से एक बढ़कर उपाधि है। और छोटे की तरफ जाओ तो छोटे से छोटी उपाधि मच्छर और भी छोटे छोटे जानवरों तक पहुंच जाएगी। तो ये उपाधियों के भेद है। इसमें जो चेतनता मालूम पड़ती है, चाहे वो क्रिया रूप से मालूम पड़ती हो चाहे ज्ञान रूप से मालूम पड़ती हो, ये चैतन्य के ही कारण मालूम पड़ती है। उन सब में एक ही चैतन्य है, चेतयत्रित्वम अन्येषाम। उस चैतन्य के योग से ही सब में चैतन्यता मालूम पड़ती है। देखो ये तो ऐसा है, अब जैसे यहां महाकाश भरपूर है कि नहीं इस हॉल में? अच्छा, तो अब यहां एक घड़ा बनाया आपने, ये घड़ा बन गया, तो घड़ा बनते ही घड़े के भीतर आकाश आ गया या घड़ा पहले बना और फिर आकाश आया? वो तो बनते ही आ गया क्योंकि पहले से ही था। तो उपाधि जब खड़ी होती है, प्रतीत होती है, तभी उसमें चैतन्य भी प्रतीत होने लगता है, क्योंकि चैतन्य तो पहले से ही था। तो ये ब्रह्मा जी मालूम पड़ने लगे, मच्छर मालूम पड़ने लगा, ये तो इनकी उपाधियां हैं शरीरों की। और ये जो अवच्छिन्न चैतन्य है, ब्रह्मा का चैतन्य और मच्छर का चैतन्य, ये चैतन्य उपाधि के कारण पहले से ही मौजूद चैतन्य मालूम पड़ने लगता है। इसलिए इसको कहते हैं चेतनश्चेतनानाम। अब एक बात जो कि ईश्वर को हमसे अलग करने में सहायक है, माने हमको मालूम पड़ती है, एको बहुनाम यो विदधाति कामान, हमारी कामनाओं की पूर्ति करने वाला ईश्वर है। जीव तो है अनंत और उनकी कामना है अनंत, और उन सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला एक परमेश्वर है। इसलिए मैं आत्मा परमेश्वर नहीं हो सकता, ये असंभावना रहती है चित्त में। अपने ही मन की कामनाओं को पूर्ण नहीं कर सकता तो दूसरों के मन की कामनाओं को कैसे पूर्ण करूंगा? तो इसमें ऐसा है कि असल में सब एक ही कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। ये आत्मा जो है ना, ये कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष तो समझते हैं ना, जिसके नीचे बैठ करके जो संकल्प करो सोई पूरा हो जाता है, उसको कल्प वृक्ष बोलते हैं। अब ऐसा कल्प वृक्ष है या नहीं है इसकी बात छोड़ो, लेकिन शब्द से कल्प वृक्ष माने जिसके नीचे बैठ करके जो संकल्प करो सोई पूरा हो जाए। तो केवल ईश्वर में ही ऐसी शक्ति है कि जो संकल्प करता है बिना कर्म किए हुए वो पूरा हो जाता है। अच्छा, आपका कौन सा संकल्प पूरा नहीं हो रहा?